नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
The topic for the Governing Council meeting.
गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
To youth, to working life, to old age.
केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।